यूएसए के एक किंडरगार्टन को सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। मीडिया को वहां से हटाया जा रहा था। किंडरगार्टन को कुछ आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों सहित वहां का स्टाफ पिछले 8 घंटे से कैद था। वहां माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि आतंकवादी कभी भी कोई गलत कदम उठा सकते थे। यूएसए जैसे देश में आतंकवादी इतनी देर तक सुरक्षा एजेंसियों से नहीं बच पाए थे, जहां पकड़े जाने पर वे अपने बचाव में एक स्कूल में आ गए और वहां बच्चों को बंदी बनाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा एजेंसी की एजेंट एम्मा अपने साथी रॉन के साथ वायरलेस के जरिए अपनी टीम से संपर्क में थी। एम्मा और रॉन वहां की एक सीक्रेट एजेंसी एनए के एजेंट थे, जिसे बच्चों के बचाव के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। एम्मा और रॉन के अलावा यहां और 2 दर्जन के करीब एजेंट थे, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा था। यार, ये हमारा कैप्टन अब तक क्यों नहीं आया? पूरी टीम आ चुकी है, मगर वो अभी भी लापता है। अगर ये बात अथॉरिटी तक चली गई तो वो उसके साथ साथ अपनी भी बड़ी बजा देंगे। उसके ऑर्डर के बिना टीम खुद से इनिशिएट कैसे कर सकती है? एम्मा ने वायरलेस बंद किया और सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा, जरा सब्र कर, हमारे कैप्टन को हमेशा से ही लेट मगर हीरो वाली एंट्री मारने की आदत है, बस आता ही होगा। रॉन अपना वायरलेस पहले ही बंद कर चुका था। उसने भी सड़क पर दाएं बाएं देखा। चल अब जल्दी से आ भी जा भाई। तभी दूर एक बाइक दिखी, जिस पर लगभग 26 साल का एक लड़का काली जैकेट में उनकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही रॉन ने कहा, लो आ गया, और अपने वेपन्स और यूनिफॉर्म संभालने लगा। एम्मा भी खुद को जल्दी से मैनेज करने लगी। उसने कपड़े संभालते हुए कहा, अपने कैप्टन को डिसिप्लिन बनाकर रखने की बहुत गंदी आदत है। खुद भले ही लेट आए, मगर हम थोड़े से भी इधर उधर हुए तो डांटने में देर नहीं लगाते। दोनों अपने कपड़े संभालने के बाद सामने से आ रहे शख्स के आने का इंतजार करने लगे। वो लड़का जल्दी वहां पहुंचा और बाइक रोककर नीचे उतरा। काले रंग की गॉगल्स के नीचे लड़के के बाल सलीके से सजे हुए थे। उसने काले रंग की जैकेट के नीचे जो शर्ट पहन रखी थी, वो उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। वो अपने लुक में डैशिंग और स्मार्ट दिख रहा था। वो उन दोनों के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही दोनों ने उसे सैल्यूट किया। उसने अपने गॉगल्स उतारे और रॉन की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों की पोस्ट इतनी भी जूनियर नहीं कि कोई डिसीजन न ले पाओ। पिछले 8 घंटे से बच्चे अंदर फंसे हैं, एंड यू गाइज आर डिस्कस्टिंग। उसे गुस्से में देखकर रॉन ने कहा, सॉरी सर। लड़के ने बिल्डिंग की तरफ देखा और बिल्डिंग की तरफ देखते हुए पूछा, क्या कंडीशन है? कैप्टन निक, एम्मा बोली, वहाँ कुल मिलाकर 4 लोग हैं, 2 सेकंड फ्लोर पर, 1 थर्ड फ्लोर पर और 1 टाउन फ्लोर पर। बच्चे 2nd फ्लोर पर हैं। हथियार के तौर पर उनके पास चाकू और तेज धारदार वाले हथियार हैं। गन्स वगैरह हमें नहीं दिखी। एम्मा आगे बोली, हम उन्हें डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, मगर बच्चे हैं तो ये क्रिटिकल रहेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, निक ने कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अपनी टीम के बाकी मेंबर की ओर जाने लगा। एम्मा और रॉन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। हम एक बार के लिए उनके सामने सरेंडर होने का ऑफर रखेंगे, अगर वे मानते हैं तो ठीक है, वरना इसके बाद एक्शन अक्वायर किया जाएगा। वहां पहुंचकर उसने एक एजेंट के हाथ में मौजूद स्पीकर लिया और उसे सामने की तरफ कर अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तुम लोग चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि सरेंडर कर दो, वरना आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इतना कहकर वो जवाब आने का इंतजार करने लगा। जब काफी देर तक जवाब नहीं आया, तब निक ने दोबारा स्पीकर में कहा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सरेंडर करने में ही तुम लोगों की भलाई है। तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो दोबारा से जवाब का इंतजार करने लगा, मगर फिर से कोई जवाब नहीं आया। निक ने स्पीकर फेंका और गुस्से में कहा, इडियट, अकल नाम की चीज ही नहीं है इनमें। इसके बाद वो एम्मा और रॉन से बोला, हमारी टीम में टोटल 26 मेंबर हैं। तुम दोनों को छोड़कर बाकी के मेंबरों के 6-6 के 4 ग्रुप बनाओ और उन्हें 4 अलग अलग डायरेक्शन में पोजीशन अक्वायर करने के लिए कहो। स्नाइपर को स्टैंड बाय मोड पर रखो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो, ऑर्डर मिलते ही जो भी निशाने पर आए उन्हें लें और बॉडी डैमेज के लिए शूट कर दो। हम लोग उन्हें पुश करेंगे, मगर डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में। दोनों ने हामी भरी और टीम के बाकी मेंबरों को इसकी जानकारी देने के लिए चले गए। जल्द ही पूरी टीम एक्शन में आई और अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन संभालने लगी। निक और उसके साथ की एक टीम सेफ्टी इक्विपमेंट से लैस डेजर्ट में बिल्डिंग के दाईं ओर खड़ी गाड़ियों के नीचे से होते हुए बिल्डिंग की ओर जाने लगी। एम्मा और रॉन भी उसके साथ थे। वे लोग बिल्डिंग की दीवार के पास पहुंचे और वहां पूरे तरीके से दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। निक ने ठीक ऊपर मौजूद खिड़की में धीरे से झांका। वहां उसे एक आतंकवादी दिखाई दिया, जो सामने दरवाजे से बाहर की ओर देख रहा था। निक ने अपनी पोजीशन संभाली और खिड़की को धीरे से धक्का मारकर नीचे हो गया। एक हल्की सी आवाज हुई और आतंकवादी का ध्यान खिड़की की तरफ चला गया। निक ने टीम मेंबरों को इशारा किया और उन्हें नीचे होने के लिए कहा। पूरी की पूरी टीम नीचे बैठ गई। आतंकवादी खिड़की के पास पहुंचा और झांकने के लिए अपनी मुंडी बाहर की, मगर जैसे ही उसने अपनी मुंडी बाहर की, निक ने उसे झपटा और खींचकर बाहर गिरा दिया। उसके बाहर गिरते ही बाकी के टीम मेंबरों ने तेजी दिखाई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके पकड़े जाते ही निक ने बाकी की टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्हें तुरंत खिड़की से अंदर जाने के लिए कहा। निक, एम्मा और रॉन के अलावा चार एजेंट और थे जो नीचे के फ्लोर पर कब्जा जमा चुके थे। निक ने दबे कदमों से सीढ़ियों का रुख किया और वहां छिपकर ऊपर का नजारा देखा। ऊपर उसे एक आतंकवादी दिखाई दिया जो सीढ़ियों के ऊपर ही बैठा हुआ था और अपने हाथ में कुछ मसल रहा था। निक पीछे हुआ और कुछ सोचता हुआ बोला, हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। अगर इसे थोड़ा सा भी मौका मिला तो ये शोर करेगा, फिर इसके दूसरे साथी को पता चलेगा और वो बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। हम इस पर डायरेक्ट हमला करेंगे। निक ने अपनी गन निकाल ली। क्या कर रहा है निक? अचानक एम्मा ने अपने टोन को बदलते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? तूने अगर शूट किया तो बच्चे डर जाएंगे। निक उसकी तरफ तीखी नजरों से देखने लगा। तुम ऑन ड्यूटी हो, मैं यहाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ बल्कि बॉस हूँ। हाँ कोई ना, ये फॉर्मेलिटी किसी और दिन कर लूंगी। अभी तुम बॉस की बजाय फ्रेंड ही बने रहो। मैं तुमको कह रही हूँ तुम शूट नहीं करोगे, और अगर मैंने शूट नहीं किया तो वो बच्चों को मार देंगे। एम्मा ने टोन बदला तो रॉन ने भी टोन बदल लिया। एम्मा, निक सही बोल रहा है, हम कब तक यहाँ छिपकर बैठे रहेंगे? हमें एक्शन लेना होगा। एम्मा निक की तरफ हुई और बोली, देख निक, तेरा प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है तो मैं प्लान बी फॉलो करता हूँ। इतना कहकर निक ने अपने दोनों रिवॉल्वर निकाले और उसे एम्मा को पकड़ा दिए। एम्मा को रिवॉल्वर पकड़ाने के बाद उसने ग्रेनेड पकड़ा और बिना सेफ्टी पिन खोले आतंकवादी के पीछे की ओर फेंक दिया। ग्रेनेड के फटते ही आतंकवादी का ध्यान उसकी ओर चला गया। आतंकवादी उसे देखने के लिए पलटा, तभी निक तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ा और आतंकवादी के पास पहुंचकर उस पर झपट पड़ा। निक और एम्मा दोनों सरप्राइज रह गए क्योंकि निक ने ये अचानक से किया था। निक ने आतंकवादी के मुंह को अपने हाथ से दबा लिया और लातों में पकड़कर उसके हिलने डुलने की गतिविधि को कम कर दिया। इतने में एम्मा और रॉन तथा बाकी के एजेंट वहां पहुंचे और उसे अच्छे से काबू कर लिया। उसके अच्छे से काबू हो जाने के बाद निक ने उसे छोड़ दिया, जबकि बाकी के मेंबरों में से दो लोग उसे अपने साथ नीचे फ्लोर पर ले गए। एम्मा बोली, निक तुम ना अकेले हीरो मत बना करो, तुम क्या करने वाले हो हम भी इसका थोड़ा हिंट दिया करो।
लगता है तुम लोगों को मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं। ये मत भूलो मैं तुम सब लोगों का कैप्टन हूँ, और मैं कैप्टन एजेंसी में पैसे देकर नहीं बना। निक ने गन वापस पकड़ी और ऊपर सेकेंड फ्लोर का रुख किया। वहां उसने आतंकवादी को बच्चों से थोड़ा दूर खड़ा देखा। जितने भी बच्चे थे वे फ्लोर के बीच में थे। निक ने ये देखते ही ईयरपीस पर हाथ रखा और ऑर्डर देते हुए कहा, थर्ड फ्लोर का आतंकवादी जिस भी स्नाइपर की रेंज में है उसे बोलो बॉडी डैमेज शूट कर दे। सामने जिसने भी ऑर्डर सुने उसने ओके सर का जवाब दिया। जवाब मिलते ही निक आगे बढ़ा और रिवॉल्वर हवा में तानता हुआ बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ वरना अंजाम महंगा होगा। आतंकवादी ने निक की बात सुनी मगर उस पर गौर नहीं किया। उसने बच्चों की ओर दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कोशिश की निक ने फायर किया और सीधे उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली लगते ही आतंकवादी झटका खाते हुए जमीन पर जा गिरा। गेट इट, निक ने एम्मा और रॉन को कहा। दोनों तेजी से आगे बढ़े और उस आतंकवादी को पकड़ लिया। निक उसके पास पहुंचा और कहा, हेलो मिस्टर इडियट, तुम्हें अच्छा भला मौका दिया गया था। अगर उसे मान लेते तो गोली का ये दर्द ना सहना पड़ता। अब इसे भी सहो और आगे जो अंजाम होगा उसके लिए भी तैयार रहो। आतंकवादी उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर निक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एम्मा और रॉन आतंकवादी को पकड़कर वहां से ले गए। अब तक ऊपर वाले आतंकवादी को भी बॉडी डैमेज पड़ गया था जिसकी वजह से वो घायल पड़ा था। टीम के कुछ मेंबर वहां पहुंचे और उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। स्थिति थोड़ी हल्की हुई तो मीडिया टीम का भारी जमावड़ा वहां उमड़ गया। निक ने टैकल करते हुए उन्हें कहा, जो भी हालात थे वे क्रिटिकल जरूर थे लेकिन हमने इसे कंट्रोल में कर लिया है। सारे आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं और बच्चे सुरक्षित हैं। मेरी टीम ने इसके लिए काफी शानदार काम किया है। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते आगे भी हम पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। पूरी बात कहने के बाद उसने शेड्स लगाए और जाने के लिए आगे बढ़ा, जहां फोटोज कैमरा के ढेर सारे फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ गए। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते हम आगे भी पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। इंडिया के मुंबई शहर के एक फ्लैट में लगे एलईडी स्क्रीन में अमेरिकी चैनल के ऊपर ये लाइन गूंजी। टीवी के ठीक सामने एक 19 साल के करीब की लड़की बैठी थी। उसने डेनिम का क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था, जहां कुछ पॉपकॉर्न उसके हाथ में थे और उसका हाथ उसके ठीक मुंह के पास रुका हुआ था। उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि वो लड़के को देखते ही पूरी तरह से उसमें खोसी गई थी। उसके मुंह से उसी खोए हुए से अंदाज में निकला, कितना सोना मुंडा है यार।